नमस्कार भारत, 22 जुलाई बुधवार, मैं हूं निखिल रंजन। व्यापम घोटाले में शांता कुमार के पत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिया जवाब, कहा कथनी करनी में फर्क है बीजेपी नेता के। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को आरक्षण की समीक्षा याचिका ठुकराई, लेकिन जाट नेताओं को भरोसा मिलेगा आरक्षण।
फार्मर्स कम्युनिटी है, चाहे वो यादव है, चाहे वो गुजर है, चाहे वो लोध है, चाहे वो कोई हो, चाहे कुर्मी हो, उनको हायर कास्ट जो है वो बैकवर्ड ही मानते हैं।
किसान चैनल और लिंटास का दावा, अमिताभ को मिले प्रचार के पैसे वापस लौटे। तुर्की में आत्मघाती हमलावर की पहचान का दावा, धमाके में मारे गए लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद शांता कुमार के खत का जवाब दिया है। शांता कुमार ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लिखे पत्र में मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए लिखा था कि इससे उनका सिर शर्म से झुक गया है। शिवराज सिंह चौहान ने शांता कुमार पर ही आरोप लगाया है कि वे बिना तथ्यों की जाँच पड़ताल किए आरोप लगा रहे हैं। शिवराज ने कहा कि शांता कुमार पत्र को सार्वजनिक कर पार्टी अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में सक्रिय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली गिलानी को सरकार ने पासपोर्ट जारी कर दिया है, लेकिन ये पासपोर्ट सिर्फ 9 महीने के लिए दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्णय गिलानी के उस अनुरोध के जवाब में लिया गया जिसमें उन्होंने सऊदी अरब में रह रही अपनी बीमार बेटी को देखने की इच्छा प्रकट की थी। तुर्की के सुरूच में हुए आत्मघाती धमाके के संदिग्ध की पहचान हो गई है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतुलू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस धमाके के लिए चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट जिम्मेदार हो। इस बीच धमाके में मारे गए लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ नारेबाजी की और तुर्की की सरकार पर चरमपंथियों के साथ सख्ती से पेश न आने का आरोप लगाया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। राजनीति में वापसी का प्रयास कर रहे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की श्रीलंका सरकार ने कड़ी आलोचना की है। राजपक्षे अगले महीने होने वाले संसदीय चुनावों में खड़े हो रहे हैं। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा ने राजपक्षे को सत्ता का भूखा बताया। वो वापस लौट रहे हैं क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए वो उतावले हैं। किसी ने उनसे वापसी के लिए नहीं कहा है, कोई उनकी परवाह नहीं करता। उनकी सभाओं में जो लोग इकट्ठे होते हैं वो सब भाड़े के लोग हैं, कोई उन्हें नहीं पूछता। वो हमारे लिए कोई चुनौती ही नहीं है। श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा के ये शब्द थे। वहीं दूसरी ओर राजपक्षे दावा कर रहे हैं कि एलटीटीई के खिलाफ श्रीलंका को जीत उनकी वजह से मिली और उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई दम नहीं है। सीरिया में 3 स्पेनिश पत्रकारों के लापता होने की खबर है। अलेप्पो में कार्यरत इन पत्रकारों से 1 सप्ताह से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। स्पेन की सरकार ने आशंका व्यक्त की है कि इस्लामिक स्टेट ने उनका अपहरण कर लिया है। अमरीकी सेनाओं के मुताबिक सीरिया में हुए एक हवाई हमले में अलकायदा के एक नेता की मौत हो गई। मारे गए शख्स का नाम मोशिन अल फादली बताया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन, bbchindi.com और मोबाइल पर भी। शुरुआत एक राजनीतिक खबर से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार के खत का जवाब दिया है। शांता कुमार ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लिखे पत्र में मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए लिखा था कि उनका सिर शर्म से झुक गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक एक करके शांता कुमार के आरोपों का कड़े शब्दों में जवाब दिया है और खुद शांता कुमार पर कई सवाल खड़े किए हैं। शिवराज सिंह चौहान के पत्र की एक कॉपी बीबीसी को भी मिली है जो इस वक्त मेरे हाथ में है और इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आप पार्टी के अनुभवी एवं वरिष्ठ नेता हैं, मुझे ये कहते हुए दुख है कि ये पत्र लिखकर खुद उन्हीं मूल्यों की अनदेखी की गई जिसके अभाव की व्याख्या इसमें की गई है। अनुशासित पार्टी के सदस्य होने के नाते ये स्वाभाविक अपेक्षा है कि उल्लेखित घटनाओं के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती। ऐसा करने की बजाय पार्टी अध्यक्ष जी को पत्र लिखना, उसको मीडिया में प्रचारित करना और दूसरी ओर आचार समिति का गठन करने का सुझाव देना विडंबनापूर्ण विसंगति है। इसे अगर कथनी और करनी में अंतर का उदाहरण कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान को शांता कुमार का ये पत्र लिखना नागवार गुजरा है। आइए पहले ये सुन लेते हैं कि शांता कुमार ने इस मामले में बीबीसी से बातचीत में क्या कहा।
कि मैंने यही कहा है कि जो घटनाएं घटी हैं और अखबारों में चैनल में जो सारी बातें आ रही हैं उससे हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं, तो जो मैं अनुभव करता था वो सारी की सारी बात मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात कह सकता है। कांग्रेस में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मुझे विश्वास है कि मैंने जो बात कही है उस बात पर मेरी पार्टी विचार अवश्य करेगी।
बीजेपी नेता शांता कुमार, लेकिन ये सिर्फ व्यापम घोटाले की बात नहीं है। बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं के असंतोष के स्वर पिछले कुछ समय से लगातार सुनने में आ रहे हैं। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार और टेलीग्राफ अखबार की संपादक मानिनी चटर्जी से इस बारे में बात की।
बीजेपी में हमेशा इनर पार्टी डेमोक्रेसी काफी रही है और फैक्शन हमेशा रहे हैं। पहले जमाने में अटल जी वर्सेस अडवाणी जी हुआ करता था, दो अटल जी और अडवाणी जी में एक स्पेशल रिलेशनशिप भी था। पर ये मोदी एंड स्पेशली अमित शाह, इन दोनों के ऑलमोस्ट एक तानाशाही रूप का जो टोटल होल्ड था पार्टी में, वो अब से मुझे लगता है कि ये जो एक के बाद एक हुआ है व्यापम का जो स्कैंडल आया है और फिर ललित गेट और सुषमा स्वराज और अरुण जेटली वर्सेस सुषमा स्वराज, ये सब जो बिलो द रेडार था वो सब अब धीरे धीरे और उभर के आ रहा है। और इसका मेन कारण है कि जो एक साल में जितना उम्मीदें थी कि पूरे देश बदल देंगे, पूरे इकोनॉमी बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है अभी भी कायम है, पर जिस एक साल में उनका काफी नीचे हो गया। तो मुझे लगता है कि जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स है पार्टी में सब धीरे धीरे उभर के आएंगे।
माननीय जी, इसमें एक चीज ये देखा जाए कि ये एक साल के नरेंद्र मोदी सरकार के परफॉर्मेंस की बात है या फिर पार्टी और सरकार में जिस तरह से ये लोग पावरफुल हो गए हैं और अपने विरोध करने वाले लोगों को इन्होंने साइडलाइन किया है उसकी रिएक्शन है, दोनों में से क्या ज्यादा है?
नहीं, मुझे लगता है कि दोनों, यू कांट सेपरेट वन फ्रॉम द अदर। हाँ, कि अगर एक साल में नरेंद्र मोदी के सरकार ने बहुत चमत्कार कर दिया होता तो फिर उनका जो होल्ड था पार्टी में वो और भी सख्त हो जाता, जैसे गुजरात में किए थे। मुझे लगता है कि गुजरात को रिपीट करना दिल्ली में जो उनकी कोशिश रही है, और कोई कलेक्टिव लीडरशिप नहीं है। और जो बुजुर्ग है, जैसे मार्गदर्शक मंडल बनाए थे ना, तो मार्गदर्शक मंडल में मुझे लगता है कि अभी एक साल में एक भी उनका मीटिंग नहीं हुआ। मुझे लगता है जोशी जी, शांता कुमार जो थोड़ा एक्सपीरियंस लीडर्स है, जो वेटरन लीडर्स है, उनका थोड़ा ईगो में भी है कि हम लोग इतने साल से पार्टी के को लीड करते थे, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं होती है। एक महीने पहले भी शायद यशवंत सिन्हा ने कहा वी हैव बीन डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड।
जैसे आप कह रहे हैं कि किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है और सीनियर लीडर्स से किसी तरह की बातचीत भी नहीं हो रही है, तो क्या पार्टी के भीतर और लोग इस तरह की बात नहीं उठा रहे हैं या फिर लोग अपने में दबाए हुए हैं? दूसरे, आरएसएस की इसमें क्या भूमिका दिख रही है? क्या वो शांत बैठा हुआ है या फिर कुछ न कुछ जो असंतोष दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे भी आरएसएस का कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है?
आरएसएस दो भाग में बटा हुआ है। मुझे लगता है भागवत जी वगैरह वो लोग समझते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है, वो लोग कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि बीजेपी को अकेला बहुमत मिल सकता है। इस सरकार रहने से उनका जो कल्चरल एजेंडा है, जो एजुकेशनल लॉन्ग टर्म जो एजेंडा है, उसके लिए वो लोग मोदी खुली सपोर्ट करेंगे। पर एट द सेम टाइम जो भारतीय किसान संघ हो, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय और स्वदेशी जागरण मंच, ये लोग तो खुलेआम, जैसे अभी सितंबर 2 तारीख को ये जो लेबर स्ट्राइक होने वाला है उसमें तो बीएमएस और सीआईटी और जो सारे ट्रेड यूनियन मिलकर कर रहे हैं, तो ये आरएसएस संघ परिवार में भी डिफरेंट इम्पल्सेस है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सब लोग अब चुपचाप बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये अब से शुरू हो रहा है और ये बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएगा अगर बिहार में बीजेपी अगर बहुमत नहीं मिलती है बिहार में, फिर एंटी मोदी एंटी अमित शाह वॉइसेस विल ग्रो, और बिल्कुल उल्टा होगा अगर वो लोग बिहार जीतते हैं।
टेलीग्राफ अखबार की संपादक मानी चटर्जी बता रही थी बीजेपी में चल रही अंतर उठापटक के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण मामले में दायर केंद्र सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार ने इस याचिका में जाट समुदाय को ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 17 मार्च को केंद्र की उस अधिसूचना को पहले ही खारिज कर दिया था जिसमें 9 राज्यों के जाटों को ओबीसी सूची में रखा गया था। हालांकि जाट नेता अब भी निराश नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ जयपुर से आभा शर्मा।
सुप्रीम कोर्ट ने जाट समुदाय को ओबीसी श्रेणी में रखने की समीक्षा याचिका खारिज कर दी। इस याचिका द्वारा केंद्र ने राजस्थान सहित देश के 8 राज्यों के जाट समुदाय को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा मानते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने को जायज ठहराया था। राजस्थान में अभी कुछ ही दिन पहले गुर्जर आंदोलन ठंडा हुआ है, पर अब जाट आरक्षण का मामला थोड़ा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील को यह भरोसा है कि यह मामला जब संविधान पीठ में जाएगा तो जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा।
इसमें क्यूरेसी में जाएगी सरकार और उसमें जो कैंसिल किए हैं उस नोटिफिकेशन का स्टे लेंगे हमें और उसमें स्टे मिलेगा, हमारी रीट मंजूर होगी। और
उधर राजस्थान जाट महासभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का भी विचार है कि जाट यानी किसान को कभी ऊंचा दर्जा नहीं मिला, वे भी जाट समुदाय को आरक्षण दिए जाने की वकालत करते हैं।
जो क्राइटेरिया ओबीसी का है, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, फाइनेंशियल क्या स्टेटस है, ये रेलेवेंट नहीं है। जितनी भी फार्मर्स कम्युनिटी है, चाहे वो यादव है, चाहे वो गुजर है, चाहे वो लोध है, चाहे वो कोई हो, चाहे कुर्मी हो, उनको हायर कास्ट जो है वो बैकवर्ड ही मानते हैं, नीचा मानते हैं। तो सोशली तो बैकवर्डनेस एक इनहेरेंट इंग्रेडिएंट है ऑफ दोज हु टिल द लैंड। लैंड टिलर को कभी ऊंचा स्टेटस नहीं मिला जो कि ब्राह्मण को मिला है, क्षत्रिय को मिला है, कि वैश्य को मिला है, ट्रेडिंग कम्युनिटी को मिला है।
राजाराम मील मानते हैं कि जाट खासतौर पर राजस्थान के नहरी क्षेत्र के किसान बहुत ही गरीब हैं। अन्य पिछड़े वर्गों की बात करें तो वो भी जाट समुदाय से आगे 15 कौमें खड़ी हैं, और गुर्जर समुदाय जो आरक्षण की पुरजोर मांग कर रहा है वे तो उनके हिसाब से बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं।
खेती करने वाले और किसान करने वाले आप पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ देखोगे तो जाट के अलावा कोई खेती करता नजर आएगा क्या? इतनी गरीबी है गाँव के अंदर, इतनी गरीबी है जिसका आप सोच नहीं सकते हो। सर्विस के अंदर भी हमारे समाज के जो लोग होने चाहिए वो 10% ही नहीं है, और हमारे लोगों में पढ़ाई का सिस्टम ही नहीं था। अभी ये आरटीएन 99 का मिलने के बाद में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चालू हुई है,
पर उन्हें पूरा विश्वास है कि जाट समुदाय को स्टे जरूर मिलेगा और जाट महासभा को इस मामले को लेकर फिलहाल कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जयपुर से आभा शर्मा।
दूरदर्शन के किसान चैनल के प्रचार के लिए अमिताभ बच्चन को 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के मेहनताने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के बाद अमिताभ ने खुद इसका खंडन किया, लेकिन उनके प्रचार का काम देख रही कंपनी और किसान चैनल ने भी स्वीकार किया है कि अमिताभ को मेहनताना दिया गया है, लेकिन अब कंपनी ने वो पैसा लौटा दिया है। इस बीच समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में प्रसार भारती से स्पष्टीकरण मांगा है। क्या है पूरा मामला, सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से।
फिल्मों में अभिनय के अलावा अमिताभ बच्चन तमाम कंपनियों और उत्पादों के विज्ञापन में भी नजर आते हैं।
खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
कई सरकारों के लिए भी उन्होंने विज्ञापन किए हैं। जाहिर है इन विज्ञापनों के लिए उन्हें मोटी रकम मिलती है, लेकिन जब किसानों की भलाई के लिए हाल ही में आए चैनल डीडी किसान की ब्रांडिंग के लिए मोटी रकम लेने की बात आई तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैंने इस विज्ञापन के लिए पैसे नहीं लिए हैं। अमिताभ ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस तरह के कई विज्ञापन वो मुफ्त में करते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीडी के किसान चैनल के विज्ञापन के लिए मैंने दूरदर्शन से किसी किस्म का अनुबंध नहीं किया है और न ही मैंने इसके लिए उनसे कोई पैसा लिया है। डीडी किसान के प्रचार के लिए मैंने एक विज्ञापन एजेंसी लूवे लिंटास के साथ काम किया, लेकिन मैंने लिंटास से भी इसके लिए पैसे नहीं लिए जैसा कि कहा जा रहा है। इस प्रचार के लिए किए गए काम को मैंने कई दिन पहले खत्म कर दिया था। मैं कई मुद्दों पर बिना पैसे लिए काम करता हूं और डीडी किसान चैनल उनमें से एक है। अगर इसके खिलाफ कोई सबूत है तो कृपया पुष्टि के लिए मेरे पास भेजें।
अमिताभ बच्चन का कहना था कि उन्होंने न तो किसान चैनल से कोई पैसा लिया है और न ही उनके लिए जनसंपर्क करने वाली कंपनी लिंटास से। लेकिन ये पूरा मामला तब और सवालों के घेरे में आ जाता है जब किसान चैनल और लिंटास कंपनी दोनों ही ये कहती हैं कि ब्रांडिंग के लिए पैसे लिए गए हैं और दिए गए हैं। सबसे पहले बात किसान चैनल की। बीबीसी ने किसान चैनल के प्रमुख नरेश सिरोही से बात की तो उनका कहना था,
हमने तो लिंटास जो कंपनी है उसको पैसा दिया है और लिंटास ने हमारा वो पैसा वापस किया क्योंकि अमिताभ बच्चन ने मना किया था। बोला उन्हीं के नाम पे इतना पैसा हमने दिया ना, उससे पहले तो नहीं दिया, तो उसने वो सारा काम हमको करा के दिया, तो वो पैसा फिर अमिताभ जी ने वापस
उधर लिंटास कंपनी ने भी इस बाबत स्पष्टीकरण दिया है और अपने बयान में पहले पैसे लेने और फिर लौटाने की बात कही है। कंपनी के बयान में कहा गया है,
डीडी किसान ने 31 मार्च 2015 को औपचारिक रूप से हमें अमिताभ बच्चन के कार्यालय से बातचीत के लिए अधिकृत किया था। 12 मई को अमिताभ बच्चन के कार्यालय से हमें इसकी स्वीकृति मिल गई। उसके बाद हमने डीडी किसान चैनल के साथ कागजी कार्रवाई शुरू की और फिर डीडी किसान ने पैसे जारी किए। श्री बच्चन ने सैद्धांतिक रूप से फैसला लिया है कि राष्ट्रहित में इस विज्ञापन के लिए वो किसी तरह का शुल्क नहीं लेंगे, इसलिए अब हमारी कंपनी डीडी किसान को पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।
किसान चैनल के प्रमुख नरेश सिरोही का ये भी कहना था कि चैनल की ओर से लिंटास कंपनी को पैसे अमिताभ बच्चन के लिए ही दिए गए थे। सवाल उठता है कि अमिताभ बच्चन ने अचानक पैसे लौटाने का फैसला किया है या फिर पहले से पैसे न लेने की बात की थी। सवाल ये भी है कि यदि अमिताभ ने पैसे नहीं लिए थे तो फिर विज्ञापन कंपनी ने पैसे किसके लिए लिए थे। जानकारों का कहना है कि इस मामले में कई सवालों के जवाब मिले जरूर हैं, लेकिन सवाल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी दिल्ली।
नमस्कार, भारत आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर और आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। तुर्की के सुरुच में हुए आत्मघाती धमाके के संदिग्ध की पहचान हो गई है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावूतुलू ने यह जानकारी दी। इस बीच धमाके में मारे गए लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ नारेबाजी की और तुर्की की सरकार पर चरमपंथियों के साथ सख्ती से पेश न आने का आरोप लगाया। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
इस्लामिक स्टेट और तुर्की की सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते प्रदर्शनकारी, मारे गए लोगों के सामूहिक अंतिम संस्कार के मौके पर मृतकों के परिजन रो रहे थे और बाकी लोग बेहद गुस्से में थे। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सोमवार को सुरुच में हुए आत्मघाती धमाके में मारे जाने वाले 32 लोगों में से ज्यादातर छात्र थे। वो एक कैंप में सीरियाई शहर कोबाने के पुनर्निर्माण पर चर्चा के लिए जमा हुए थे। कोबाने में कुर्द लड़ाकों और आईएस के बीच भयानक लड़ाई जारी है। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि अब वो हमारे बीच नहीं है। वो इतना शांतिप्रिय लड़का था, हिंसा में उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैंने उसकी माँ को रोते देखा है, लेकिन मुझे अब भी लग रहा है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। ये थे मरने वाले एक छात्र की दोस्त के शब्द। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावूतुलू ने बताया कि संदिग्ध हमलावर की पहचान कर ली गई है और बहुत ज्यादा संभावना है कि इस धमाके के लिए चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट जिम्मेदार है। विपक्षी दलों का आरोप है कि तुर्की की सरकार इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव को नहीं रोक पा रही है, लेकिन दावूतुलू ने इस बात का खंडन किया। बीबीसी को मिली जानकारी के मुताबिक अब तुर्की की सरकार अपने पर पड़ रहे दबाव की वजह से आने वाले दिनों में चरमपंथियों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकती है। हालांकि इससे चरमपंथियों के भी बदले की कार्रवाई करने की आशंका बढ़ जाएगी।
तुर्की में संदिग्ध आत्मघाती हमलावर की पहचान हो गई है। ब्यौरा सुना रहे थे प्रभात पांडे। और अब बात उन खबरों की जिन पर आज रहेगी बीबीसी की नजर।
जी निखिल, जिन खबरों पर आज हमारी नजर होगी उनमें मॉनसून सत्र, संसद का मॉनसून सत्र, उसके दूसरे दिन क्या होगा, इसके अलावा मिस्र के प्रधानमंत्री इब्राहिम महलाब इटली की यात्रा कर रहे हैं और इसराइली और फलस्तीनी नेताओं की इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी आज है, इसके अलावा नार्वे के उटाया में हुए धमाके की चौथी बरसी है आज। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर हंगामा होने के आसार हैं। पहले दिन राज्यसभा में विपक्ष ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग की थी, तो अब दूसरे दिन क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरे दिन भी ऐसी आशंका है कि विपक्ष अपनी मांग को लेकर संसद में के दोनों सदनों में हंगामा मचा सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मिस्र के प्रधानमंत्री इब्राहिम महलाब 4 दिन की इटली यात्रा पर आज पहुंच रहे हैं। वो बिजली, तेल और गैस से जुड़े कई समझौते इटली से करेंगे। यात्रा के दौरान वो इटली के राष्ट्रपति सर्जो मार्टारेला और रक्षा मंत्री पाओलो जेंटलोनी से मिलेंगे। इसके अलावा इटली के प्रधानमंत्री मटायो रेंजी इसराइली और फलस्तीनी नेताओं से यरूशलम में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का उद्देश्य इसराइल और फलस्तीन के बीच शांति वार्ता को फिर से शुरू कराना है। इसके अलावा नॉर्वे में हुए धमाके की चौथी बरसी है। हम आपको बता दें कि 22 जुलाई 2011 को नॉर्वे के उटाया द्वीप में एक यूथ सेंटर में हुए धमाके और गोलीबारी में 77 लोगों की मौत हो गई थी।
और अब बात उस माँ और बेटे की जिनका मिलन जो है 17 साल के बाद मुमकिन होने जा रहा है। एक अनोखा पासवर्ड जिसे सिर्फ माँ और बेटे एक दूसरे से बदल सकते थे, और यही वो चीज़ थी जिसने एक बिछड़े हुए बेटे को 17 साल बाद उसकी माँ से मिलवाया। कर्नाटक में तुमकुरु के जाहिद पाशा की ये दिलचस्प कहानी है, जब वो हरियाणा में मेवात जिले के सुनहरा में रहने वाली अपनी माँ से 17 साल बाद मिलेंगे। उनकी मुलाकात 24 जुलाई को होनी है। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
वो अनोखा पासवर्ड क्या था जिसने एक माँ ने अपने बिछड़े हुए बेटे को पहचान लिया, सुनिए जाहिद पाशा के शब्दों में।
जिनको मैं जानता था आबिद, उन्होंने बात किया तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तो मैंने बता दिया। अम्मी का नाम क्या है तो वो भी बता दिया। फिर मेरे को छोटी छोटी बातें पूछने लगे। फिर मेरी अम्मी से बात की तो अम्मी को मेरे पूछने लगे कि दादा का नाम क्या है। फिर एक मरतबा मेरे को अम्मी बचपन में मारे थे तो उन्होंने वो पूछा कि तुमको मैं एक बार रस्सी में मारे थी तो किससे लिए मारी थी, किस गलती पे करके, तो मैंने उनको बता दिया तो उन्होंने यकीन कर लिया, हाँ तुम मेरे ही बेटे।
क्या गलती?
वो गलती ऐसी है कि उधर लोग जो है वो पत्ते खेलते थे ताश स्पीड, तो मैं उधर जाके बैठ गया था, तो उन्होंने मेरे को बैठा हुआ देख लिया तो उस बात पे मेरे को मार दिया कि ऐसी गलत जगह पे नहीं बैठना, उधर नहीं जाना। तो फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, नहीं आप ही मेरे बेटे हो, तो उन्होंने बोला तो जल्दी अब घर पे आ जाओ करके बोले।
इस वाक्य का महत्व ये है कि जाहिद पाशा की एक 17 साल पुरानी खोज खत्म हुई। ये खोज जब शुरू हुई थी जब उनका 14 या 15 साल की उम्र का दोस्त कर्नाटका के टुमकुरु रेलवे स्टेशन पर जाहिद को छोड़कर चला गया। जाहिद की तरह वह भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक मदरसे में पढ़ रहा था। एक दिन उसने जाहिद को बताया कि वह एक अच्छी पढ़ाई के लिए ट्रेन में सवार हो गया। जाहिद को ठीक याद भी नहीं है कि वह तीसरी या चौथी क्लास में थे। जाहिद कहते हैं,
नहीं मेरे पास तो सिर्फ एक दो जोड़े कपड़े थे, पैसा तो तकरीबन 80 या 70 रुपए थे मेरे पास, और इधर रेलवे स्टेशन के पास जब था तो मैं एक दो दिन तो उसी में खाना पीना सब किया था, एक दो तीन रोज। जब मस्जिद में था तो उधर हमारे वो फारूक भाई हैं, उन्होंने ही मेरे को पाला बड़ा किया, सभी उन्होंने ही अपने घर पे लेके गए मेरे को पूछे। तो मेरे को मालूम नहीं था कि अब किधर जाना है, मेरे को उतना सिर्फ मालूम था कि दिल्ली से हम शायद बैठे हैं तो दिल्ली तक तो जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से किधर जाना वो मेरे को मालूम नहीं था। गाँव का नाम सुनहरा या सुनहरा शायद ऐसा था, तो वो भी मेरे को कन्फ्यूज था। बाप का नाम मालूम था, तो उन्होंने ही इधर मेरे को फिर ठीक है तो एक काम करते हैं, जब तक आपके माँ बाप नहीं मिलते शायद कोशिश करते हैं करके उन्होंने भी बोला। फिर उन्होंने अपने घर पे ही रख लिया, तो वो केबल का उनका जो था बिजनेस केबल का था उस टाइम में, तो उन्होंने केबल में ही मेरे को काम पर रख लिया। फिर शादी भी कर दी वो लोग, और शादी करने के बाद अभी 2 बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हैं अभी तो हम।
कुछ हफ्ते पहले जाहिद ने हरियाणा के जिंद जिले के बिदीपुर के सरपंच सुनील जागलन से संपर्क किया। सुनील जागलन वही हैं जो हाल ही में सेल्फी विद डॉटर से मशहूर हुए हैं। सुनील की कोशिशों से ही जाहिद की माँ उनका इम्तिहान लिया था। जो अपने माता पिता मिल गए हैं, क्या वह वापस मेवट के सुनहरा गांव चले जाएंगे? जाहिद ने कहा,
उनको क्या पता है, वो भी अम्मा बाबा है, ये भी अम्मा बाबा है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अभी उधर जाऊंगा तो एक 10 दिन उधर रहूंगा और अपने अम्मी बाबा को, अब अब्बू को भी अम्मी को इधर ही लेकर आ जाऊंगा मेरे पास।
दिलचस्प बात यही है कि प्रकृति और पोषण के बीच जो संघर्ष होती है उसको जाहिद ने साफ तरीके से मिटा दिया। यही है जाहिद के नजरिए की खूबियत। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
नमस्कार, भारत में अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का और तमाम अखबारों पर नजर डालकर प्रभात पांडे हाजिर हैं स्टूडियो में। बताइए प्रभात जी, अखबारों में आज क्या कुछ है?
जी निखिल, मेरे पास तमाम अखबार सामने पड़े हुए हैं। अखबारों में जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट 1993 में हुए थे, उनके जो दोषी याकूब मेनन हैं उनकी दया याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कल खारिज कर दी, तो इस तरह की खबरें हैं। अमर उजाला में है, मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी मेमन को फांसी तय। टाइम्स ऑफ इंडिया की
तारीख तय हो गई है
जी, 30 जुलाई को उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, जो कि उनका जन्मदिन भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, याकूब विल हैंग ऑन बर्थडे फॉर किलिंग 257 आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली। इसके अलावा जो उज्जैन में और मुंबई में ज़बरदस्त बारिश हुई है उसकी खबरें भी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। दैनिक भास्कर की खबर है, महाकाल को सफाई देने पहुंचा बारिश का पानी। इसमें दिलचस्प बात ये लिखी हुई है कि वो उज्जैन और इंदौर, ये दो शहर जो कुछ जहाँ कुछ दिनों पहले बारिश के लिए जो है भगवान की प्रार्थनाएं की जा रही थी, अब वहाँ बारिश रोकने के लिए प्रार्थना की जा रही, इतना जोरदार पानी हुआ।
ये फर्क 2 दिन में आ गया है।
जी जी जी। इसके अलावा मुंबई में भी बहुत बारिश हुई है और मुंबई शहर में आमतौर पर जैसा होता है बारिश में जो अंडरपास और फ्लाईओवर और तमाम लोकल ट्रेन में
काफी अव्यवस्था हो गई शहर में,
तो उसकी भी तस्वीरें हैं। इसके अलावा कल संसद में जो संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ उसकी खबरें भी तमाम अखबारों में छाई हुई हैं। जनसत्ता की खबर है, इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, राज्यसभा स्थगित। और इंडियन एक्सप्रेस में की हेडलाइन है, डेडलॉक, गवर्नमेंट रेडी फॉर डिबेट, अपोजिशन सेज गेट योर मिनिस्टर टू रिजाइन फर्स्ट। अपोजिशन ने कहा कि हम इस पर डिबेट तब करेंगे जब पहले आप अपने मिनिस्टर्स को हटाएं। इसके अलावा मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, जनसत्ता में एक बड़ा दिलचस्प कार्टून बना हुआ है। जी जी, इस पे जो नरेंद्र मोदी ने कल मीडिया के सामने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी उनसे तमाम विषयों पर, जब वो संसद से बाहर आए तब तमाम विषयों पर पत्रकारों ने सवाल पूछे कि भाई
वो माइक के सामने खड़े भी हुए
जी, माइक के सामने जो एक माइक जो डेजिग्नेटेड जगह पे लगा होता है वहां तक आए और मुस्कुराते रहे, उनके पीछे राजीव प्रताप रूडी और मुख्तार अब्बास नकवी खड़े थे, वो भी मुस्कुराते रहे। मीडिया ने 4-5 सवाल पूछे, नरेंद्र मोदी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला। इस पर जनसत्ता में एक कार्टून छपा है जिसमें पत्रकार बोल रहे हैं, सर कुछ तो बोलिए। फिर उन्होंने रिमाइंड कराया, प्लीज़ सर कुछ तो बोलिए। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले, वो मन ही मन बोल रहे हैं कि मन की बात मुँह से कैसे बोल दूँ। तो ये इस तरह की खबरें
तो कुछ भी जवाब नहीं दिया उन्होंने, और ये भी बाद में कहीं कुछ आई नहीं बात की वो क्यों नहीं बोले या
नहीं कुछ तो कुछ भी नहीं, बस उन्होंने
कुछ हद तक जस्टिफाई कर रहा है उनके।
जी जी। इसके अलावा व्यापम घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उस पे खबर छपी है जनसत्ता में कि कांग्रेस और भाजपा के विधायकों में मारपीट हुई।
बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे जी इन तमाम अखबार की खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचारों के साथ मैं प्रभात पांडे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के वरिष्ठ सांसद शांता कुमार के खत का जवाब दिया है। शांता कुमार ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लिखे पत्र में लिखा था कि मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से उनका सिर शर्म से झुक गया है। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शांता कुमार पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में सक्रिय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली गिलानी को सरकार ने पासपोर्ट जारी कर दिया है, लेकिन ये पासपोर्ट सिर्फ 9 महीने के लिए दिया गया है। तुर्की के सुरूच में हुए आत्मघाती धमाके के संदिग्ध की पहचान हो गई है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतुलू के मुताबिक संभावना है कि ये व्यक्ति इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ हो सकता है। राजनीति में वापसी का प्रयास कर रहे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की श्रीलंका सरकार ने कड़ी आलोचना की है। राजपक्षे अगले महीने होने वाले संसदीय चुनाव में खड़े हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे प्रभात पांडे, आज स्टूडियो संभाल रहे हैं शाकिर आलम। आपसे अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में, तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर।